ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली में चल रहे जल संकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होगा। संघ लोक सेवा आयोग की कल होने वाली परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली गाजियाबाद आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत रेल और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर रेल सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय श्रमिकों, भर्ती एजेंट और ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त डिजिटल भुगतान के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग पहले सीजन का आयोजन नोएडा इंडोर स्टेडियम में 11 जुलाई से होने जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। राजधानी में चल रहे जल संकट पर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की। श्री सुक्खू ने उन्हें दिल्ली के जल संकट को दूर करने में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। आज एक प्रेसवार्ता में आतिशी ने बताया है कि यमुना में पानी की कमी के कारण राजधानी में जल संकट बना हुआ है।
हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है वहां पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं।
भाजपा ने आज जल संकट को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने खाली मटके फोड़कर जल संकट के प्रति अपना विरोध दर्ज करवाया। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर राजधानी में पानी की चोरी पर अंकुश लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया है।
पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मंत्री विधायक पानी की चोरी और कालाबाजारी करवाते हैं। ये ताजा मामला इंद्रपुरी के बुद्धविहार का है, जहां लोगों से 35,000 रुपए लिए गए हैं और पानी का अवैध कनेक्शन दिल्ली जल बोर्ड की पाइप से जोड़ दिया गया है। कोई मीटर नहीं लगा है, कोई कानूनी काम नहीं है, सब गैर कानूनी है, लेकिन लोगों से पैसे देकर उन्हें पानी दिया जा रहा है।
इस बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा है कि ये दिल्ली सरकार की वितरण प्रणाली की पूर्ण विफलता है।
दिल्ली में जितना मैं पानी का पहले 5 साल तक मंत्री होने के नाते और मेरी पृष्ठभूमि में पानी से जुड़े होने के नाते जितना मैं समझता हूं, दिल्ली के पानी का संकट केवल और केवल कुप्रबंधन के कारण से है। इट्स अ एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ द दिल्ली गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और फिर संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परम्परा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और अन्य 5 लोगों को न्यायालय की कार्यवाही की वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के निर्देश दिए हैं। वीडियो में अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की गिरफ्तारी के बाद 28 मार्च को राउज एवेन्यू अदालत में अपना पक्ष रख रहे थे। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और अमित शर्मा की खंडपीठ ने सुनीता केजरीवाल और अन्य के खिलाफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियमों के कथित उल्लंघन के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी उस दिन से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग की पोस्ट हटाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। केंद्रीय कोयला और खनन मंत्री जी किशन रेड्डी तथा राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने आज नई दिल्ली में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में भूमि पट्टा नीति में संशोधन और कोयला व्यापार एक्सचेंज की स्थापना सहित कोयला क्षेत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। संघ लोक सेवा आयोग की कल होने वाली परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली गाजियाबाद आरआरटीएस कॉरिडोर पर नमो भारत रेल और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर रेल सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी और दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सिविल सेवा परीक्षा के अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्रों पर समय से पहुंच सके, इसलिए यह निर्णय लिया गया है। नमो भारत के संचालित खंडों पर कल रेल सेवाएं सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार प्रवासी भारतीय श्रमिकों, भर्ती एजेंट और ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान की जाएंगी। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव ब्रह्म कुमार और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से महाप्रबंधक नीलेश द्विवेदी ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल से सभी स्टेट बैंकों के नेट बैंकिंग के माध्यम से यूपीआई, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और एनईएफटी के माध्यम से भुगतान के लिए शून्य लेन देन शुल्क के साथ विभिन्न उत्प्रवास संबंधी शुल्क का भुगतान हो सकेगा। मंत्रालय ने आज कहा कि यह समझौता ज्ञापन प्रवासी भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप से।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने कहा है कि निगम के विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 90% छात्रों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिसके बाद छात्रों को विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता धनराशि उनके खातों में सीधी भेजी जा सकेगी। वहीं शेष 10% छात्रों के खाते भी अगले महीने कक्षाएं शुरू होने से पहले खुलवा दिए जाएंगे। निगम अधिकारियों ने बताया है कि निगम के अधीन आने वाले विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को निगम द्वारा वर्दी, जूते, बैग और स्टेशनरी जैसी जरूरी शिक्षा सामग्री के लिए राशि प्रदान की जाती है। इस राशि को प्राप्त करने के लिए छात्र का बैंक खाता होना आवश्यक है। इस संबंध में निगम ने सभी क्षेत्रीय उपायुक्तों को उनके अधीन आने वाले स्कूलों में सभी छात्रों का खाता खुलवाने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। दिल्ली नगर निगम ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए संपत्ति कर जमा करने के लिए शनिवार और रविवार को भी अपने कार्यालय खुले रहने का निर्णय लिया है। निगम क्षेत्र में संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि इस महीने की 30 तारीख है। ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने वालों के लिए निगम ने अतिरिक्त छूट की घोषणा की है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2024 में कहा है कि इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध वनजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्ला मुथु को दिया जाएगा। उन्होंने सबसे लंबे समय तक चलने वाली वन्यजीव श्रृंखला लिविंग ऑन द एज पर काम किया है। आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में श्री मुरुगन ने कहा कि इस वर्ष पहली बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे फिल्म निर्माताओं को अपनी परियोजनाओं के लिए खरीदार, प्रायोजक और सहयोगी ढूंढने में मदद मिलेगी।
मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 18th एडिशन का फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल में हमारा शॉर्ट फिल्म मेकर्स है एंड डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स है, उनका हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। एनिमेशन फिल्म्स के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे देंगे हमारा NFDC के अंदर। इसमें हमारा सरकार है, सबके लिए, हमारा देश के लिए सिनेमा लवर्स है, उनका ये स्टूडेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। डायरेक्टर के साथ, कंटेंट राइटर के साथ एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में।
साहित्य अकादमी ने आज युवा पुरस्कार 2024 और बाल साहित्य पुरस्कार 2024 की घोषणा की। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता में युवा पुरस्कार के लिए 23 और बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों को अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा चयनित किया गया। साहित्य अकादमी ने बताया है कि सभी चयनित लेखकों को पुरस्कार स्वरूप 50,000 रूपये की धनराशि और एक ताम्र पट्टिका से सम्मानित किया जाएगा। भारतीय कला और संस्कृति को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA और संसद टीवी के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत IGNCA द्वारा निर्मित कार्यक्रम संसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे। इस समझौते पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉ सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी की ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी रजत पुनहानी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर IGNCA की निदेशक डॉ प्रियंका मिश्रा सहित अन्य विभागों के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। यूपी कबड्डी एसोसिएशन के सहयोग से उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग पहले सीजन का आयोजन 11 जुलाई से करने जा रहा है, जो 25 जुलाई तक नोएडा इंडोर स्टेडियम में चलेगा। आइए सुनते हैं हमारी सहयोगी सरफिरोजी की ये रिपोर्ट।
कबड्डी अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। यही कारण है कि प्रो कबड्डी लीग के आने के बाद पहले गांव और कस्बों में खेला जाने वाला ये खेल अब बड़े स्तर पर नए नए आयोजन का रूप लेने लगा है। इस आयोजन की घोषणा UPKL के संस्थापक संभव जैन और AKFI के संयुक्त सचिव और उत्तर प्रदेश कबड्डी एसोसिएशन के सदस्य विनय कुमार सिंह द्वारा हाल ही में की गयी। उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग मेगा नीलामी 10 जून 2024 को नोएडा के सरोवर होटल में की गई। इस कबड्डी लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें यमुना योद्धा, नोएडा निंजा, काशी किंग्स, अवध रामदूत, ब्रज स्टार्स, संगम चैलेंजर्स, अयोध्या वॉरियर्स और गंगा किंग्स ऑफ मिर्जापुर शामिल हैं। प्रत्येक टीम में 15 खिलाड़ी होंगे, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य क्षेत्रों से कुल 120 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आगामी त्यौहार के मद्देनजर दिल्ली के खाद्य आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने फतेहपुर से टाउन हॉल रोड और आसपास के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने ईद उल अजहा पर दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सड़कों की साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। खासकर फतेहपुर से टाउन हॉल तक और आसपास के इलाकों की गलियों की साफ सफाई को सुनिश्चित करने को कहा गया है। भारत सहित दुनिया भर से 20 लाख से अधिक हज यात्री आज सऊदी अरब पहुंचे हैं। इस वर्ष हज यात्रा में भारत से 1,75,000 से अधिक लोग आए हैं। इनमें से 1,40,000 हज यात्री भारतीय हज समिति के माध्यम से और लगभग 35,000 निजी संचालकों के माध्यम से आए हैं। इस साल 5,000 से अधिक भारतीय महिला हज यात्री बिना महरम या पुरुष अभिभावक के हज यात्रा पर गई हैं। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति और अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव, सेना, पुलिस तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। सरकार ने कथित तौर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी एक फर्जी वेबसाइट की पहचान की है। ये वेबसाइट सरकारी नौकरियां देने का दावा करती हैं और पंजीकरण शुल्क के रूप में 435 रूपये की मांग करती हैं। PIB फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि वेबसाइट का सरकार से कोई संबंध नहीं है। राजधानी में भीषण गर्मी जारी है। आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री अधिक रहते हुए 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक रहते हुए 32.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आकाश साफ रहने और भीषण गर्मी जारी रहने की संभावना व्यक्त की गई है। कल का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली में चल रहे जल संकट को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ अलग अलग स्थानों पर मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र 24 जून से शुरू होगा। संघ लोक सेवा आयोग की कल होने वाली परीक्षा के मद्देनजर दिल्ली गाजियाबाद RRTS कॉरिडोर पर नमो भारत रेल और दिल्ली मेट्रो की सभी लाइनों पर रेल सेवा सुबह 6 बजे से शुरू होगी। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय श्रमिकों, भर्ती एजेंट और ई माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त डिजिटल भुगतान के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और उत्तर प्रदेश कबड्डी लीग पहले सीजन का आयोजन नोएडा इंडोर स्टेडियम में 11 जुलाई से होने जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।